ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। तो आज हम लोग पढ़ेंगे भागवत महापुराण के पांचवें स्कंद अध्याय 9 से भरत महाराज के आचरण के संबंध में, उनके कैरेक्टर के संबंध में, टेक्स्ट नंबर 12। और साथ साथ आज गोपाल भट्ट गोस्वामी का तिरुभाव तिथि है, तो गोपाल भट्ट गोस्वामी के विषय में भी वार्ता करेंगे। अथ कदाचित कश्चित् वृषलपति भद्रकालै पुरुष पशु पुरुष पशु अलभत अपत्यकाम। अथ कदाचित कश्चिद वृषलपति भद्रकालै पुरुष पशु पुरुष पशु आलभत आपत्यकाम। हिंदी किताब कहाँ है? अथ तत्पश्चात कदाचित एक समय कश्चित कुछ लोग वृषलपति अन्यों की संपत्ति लूटने वाले शूद्रों का सरदार भद्रकाली भद्रकाली नामक देवी को पुरुषपशुम मनुष्य के रूप में पशु की आलभता बलि देने लगा। अपत्य काम पुत्र का इच्छुक। अनुवाद और तात्पर्य भक्तिविदान स्वामी प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। इसी समय पुत्र की कामना से डाकुओं का सरदार जो शूद्र कुल का था पशु तुल्य जड़ मनुष्य की भद्रकाली पर बलि चढ़ाकर उपासना करना चाहता था। तात्पर्य निम्न श्रेणी के लोग यथा शूद्र अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए देवी काली या भद्रकाली जैसी देवियों की उपासना करते हैं। इस उद्देश्य से वे कभी कभी मूर्ति अर्चा विग्रह के समक्ष मनुष्य का वध करते हैं। वे सामान्य ऐसा व्यक्ति चुनते हैं जो मंद बुद्धि हो, अर्थात मनुष्य के रूप में पशु हो। ओम अज्ञानतिमिरांदस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुर्जिनिमीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। भूतैर्महद्भियैमा पुरो विभो निरमायसे ते यदमूषुपुरुषम् भुक्ते गुणांशोडशोडशात्मकम् सोलम् कृषिष्टम् भगवन् वचांसि मे। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तदभक्ताय नमो नमः। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः भावराधिका माधुरी अस्वादय सुखकाज जयति कृष्ण चैतन्य कलि प्रकटे ब्रजराज जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे तो अब तक से जो कथा हुई है उसको मैं संक्षिप्त में थोड़ा बताऊंगा। जो लोग आज रविवार के सत्संग में आए हैं उनके फायदा के लिए, तो ब्रज जी के संबंध में हम लोग सुनते आ रहे हैं कि किस प्रकार से ब्रज जी राजा थे, पहले कालांतर में भजन करने गए और हरिण के संसर्ग से पुनः देह प्राप्त हुआ जो हरिण का देह था, लेकिन भक्ति के चलते इनकी स्मृति बनी रही। अब इस जन्म में वे एक ब्राह्मण परिवार में जन्म लिए हैं, अंगिरा गोत्र के ब्राह्मण हैं। इस ब्राह्मण की दो पत्नियां थी, एक पत्नी से 9 पुत्र उत्पन्न थे और दूसरी पत्नी से जड़ुआ एक बालक और एक बालिका उत्पन्न हुए थे। पहले कितने भी बच्चे हो जाए बाप मां को कोई टेंशन नहीं था, आजकल तो हम दो हमारे दो इसी में लगे हुए हैं। अंगिरा गोत्र के ब्राह्मण एक नहीं दो दो पत्नियां, कोई कह सकता है कि पहले पत्नी से 9 पुत्र थे ही तो दूसरा विवाह करने की क्या जरूरत है। खैर अब उधर मैं नहीं जाऊंगा किस कारण से विवाह किए, लेकिन जो सुखदेव गोस्वामी यहां पर वर्णन किए हैं कि बड़े उच्च कुल के ये ब्राह्मण थे, अंगिरा गोत्र के थे, वैदिक साहित्य के ज्ञान में निपुण थे और सभ्यता संस्कृति में बहुत उच्च कोटि का उन्हें विचार था, आचरण था और वैदिक कर्मकांड में भी वे बड़े निपुण थे। कालांतर में वे इसी में लगे रहे, परिवार में ही ज्यादा लगे रहे, भजन करने का उन्हें ज्यादा समय नहीं मिला, कालांतर में ही लगे रहे थे। लेकिन शुद्ध ब्राह्मण थे इसलिए उनके घर पर भरत जी का जन्म हुआ। जैसा कि भगवत गीता में वर्णन किया गया है कि कोई व्यक्ति अपना भक्ति पूरा नहीं कर पाता है तो उसे उच्च कुल में जन्म मिलता है। श्रीमताम सूचनाम श्रीमता आगे हैं जो गो भ्रष्ट उपजाए थे, जो जग भ्रष्ट होता है वो उच्च कुल में जन्म लेता है। तो ब्राह्मण परिवार उच्च कुल है, ब्राह्मण कहने का मतलब जो भगवान को जानता है, वैष्णव परिवार। जन्म ना आ जाए तो शूद्र, संस्कारादि जव हवेत वेद पढ़ेत भवेत विप्रा ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण। जो ब्रह्म को जानता है, भगवान को जानता है, ब्राह्मण है। तो कालांतर में जब उनका देहांत हो गया तो उनकी छोटी जो पत्नी थी उनके साथ में सती हो गई। उन दिनों सती प्रथा था, अभी नहीं है। और अपने दो संतानों को सौंप करके अपने सौत के हाथों वो सती हो गई। कालांतर में जैसा कि होता है कि भाई लोग जो सौतेला भाई है उसके साथ में उतना उचित व्यवहार नहीं करते हैं जो अपने भाइयों के साथ में। आजकल तो अपने भाइयों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं, पहले कम से कम केवल सौतेले के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते थे, सौतेला व्यवहार करते कि हमारे साथ में सौतेला व्यवहार कर रहे हो, आज भी कहते हैं। लेकिन आजकल तो अपने भाई के साथ में लोग उचित व्यवहार नहीं करते हैं। जो पत्नी कहती है वही बात मानना पड़ेगा, भाई का गला भी क्यों ना काटना पड़े। लेकिन पहले सभ्यता संस्कृति हमारी ऊंच थी, ऐसी नहीं थी। तो भरत जी के भगवत्ता को ये लोग समझ नहीं पाए। भरत जी महान वैष्णव थे, वे नरोत्तम थे। जैसा कि भागवतम में नरोत्तम का व्याख्या किया गया है, नरोत्तम का परिभाषा बताया गया है, यह स्वकात परतो विह जात निर्वेद आत्ममान हृदय कृत्वा हरिम गेह प्रव्रज स नरोत्तम। नरोत्तम वह है जो यह स्वकात परतो विह, या तो अपने से या दूसरों के द्वारा प्रचार किए जाने पर, जो घर द्वार पुत्र परिवार देह से अनासक्त हो जाता है। भरत जी को ठोकर लगा था, उन्हें याद आ रहा था बार बार। तो ये आते हैं स्वकात, अपने से इनको वैराग उत्पन्न हुआ था, अन्य लोगों को प्रचार करने पर वैराग उत्पन्न होता है, सुन करके वैराग उत्पन्न होता है। जैसे विदुर जी धृतराष्ट्र को प्रचार किए कि तू जीवन भर भीम को मारने का प्रयास करते रहा और आज भीम के द्वारा दिए गए रोटी पर तुम पल रहे हो, वैसे ही कुत्ते के समान हो जो घर का मालिक दुत्कारता रहता है लेकिन फिर रोटी देता है चला आता है। तो इस प्रकार से प्रचार किए स्ट्रांग, तब धृतराष्ट्र में वैराग उत्पन्न हुआ। तो यह स्वकात परतो भी है, जो अपने आप वैराग उत्पन्न हो जाए या दूसरों के द्वारा प्रचार करने से। जात निर्वेद आत्मवान, जिसमें निर्वेद उत्पन्न हो जाता है, ज्ञान उत्पन्न हो जाता है संसार के समय, संसार के वस्तुओं के विषय में। और हृदय कृत्वा हरिम गे, हां उसका संबंध केवल भगवान से ही रहता है, बाहर के वस्तुओं को भूल जाता है, बाहर क्या हो रहा है पता ही नहीं। प्रवजे स नरोत्तम, बाहर का शरीर वगैरह सब निरस हो जाता है, सुन्न हो जाता है। ऐसे कभी कभी शरीर का कोई अंग सुन्न हो जाता है, चिट्ठी काटो पता नहीं चलता है, है? तो ऐसे बाहर से कोई संबंध नहीं होता है। तो ये नरोत्तम का परिभाषा है। भरत जी उसी स्टेज पर थे, नरोत्तम के स्टेज पर थे। उनके भाई गण जो सौतेले भाई थे, पीछे के श्लोकों में बताया गया है कि कैसे उनका सदुपयोग करते थे। खाने पीने को भी उचित नहीं देते थे, जो भी सड़ा उड़ा मिलता था वो दे देते थे खाने के लिए, जो बचा खुचा मिलता था, और खूब कठिन से कठिन काम कराते थे। लेकिन भरत जी को कोई शिकायत नहीं थी, क्योंकि बाहर के वस्तु को देख ही नहीं रहे थे, वे आंतरिक वस्तु को ही केवल देख रहे थे। तो कल आप लोग सुने होंगे जहां पर कैसे वे लोग व्यवहार करते थे भाई लोग, जड़भरत केवल भोजन के लिए काम करता, उसके सौतेले भाइयों ने इसका लाभ उठाकर उसे कुछ भोजन के बदले में खेत में काम करने में लगा दिया, किंतु उसे खेत में ठीक से काम करने की विधि ज्ञात न थी। उसे यह ज्ञात न था कि कहां मिट्टी डाली जाए अथवा कहां की भूमि को समतल या ऊंचा नीचा रखा जाए। उसके भाई उसे टूटे चावल, कन्ना, कना, खली, धान की भूसी, धूना, अनाज तथा रसोई के बर्तनों की खुरचन दिया करते थे, किंतु वह इन सबको अमृत के समान स्वीकार कर लेता था। उसे किसी प्रकार की शिकायत नहीं रहती और वह इन सब चीजों को प्रसन्नतापूर्वक खा लेता था। ये है परमहंस गति। भागवत के 7वें स्कंद में ऐसा ही कुछ बात आया है, तो मैं सोचा कि हम लोग सुने परमहंस गति क्या होती है। जैसा कि पिछले दिन मुकुंद माधव प्रभु बता रहे थे, जय श्री श्री गौनिताय राधारास बिहारी सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जाए, कि वो चार प्रकार के सन्यासी होते हैं, कुटिचक, बौद्धक, हंस और परमहंस। कुटिचक जो घर से बाहर कुटिया बना करके रहता है और घर से खाना पानी जाता है, राशन पानी जाता है, गांव में होता है, बहुत लोग झोपड़ी बना लेते हैं, दाढ़ी ओढ़ी भी बढ़ा लेते हैं, साधु लगते हैं, थोड़ा साधु बने सन्यासी हैं, वो कुटिचक है। बौद्धक व्यक्ति जो भी पेड़ से गिरा हुआ फल होता है उसको प्राप्त करता है, खेत से अन्न काट लिया गया उसमें कुछ अन्न गिरा हुआ होता है, बाजार की दुकानें बंद कर दी गई है, बाहर कुछ पड़ा हुआ होता है, उसे काम चला देता है। हंस मधुकरी इत्यादि कर करके अपना काम चला लेता है, लेकिन जो परमहंस होता है वो कुछ भी नहीं करता है। अजगर करे न चाकरी, पक्षी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। अजगर वृत्ति, ये अजगर वृत्ति से जीवन यापन करते हैं। अजगर, मैं बहुत पहले समझाया था, अजगर का मतलब जिसका अंग प्रत्यंग विष से भरा हो उसे अजगर कहते हैं। सांप जब काटते हैं तब विष लगता है, अजगर यदि छू भी देंगे तो भी विष लग जाएगा, सांस लेंगे या सांस छोड़ेंगे तो भी विष लग जाएगा, इसे अजगर है। तो भक्त लोग अजगर होते हैं, उनके संग में जो आ जाएगा उस पर कृष्ण भावना का विष लग जाएगा। संसार का जो अमृत है ना, जिसके लिए कठिन परिश्रम कर रहे हैं, वो खत्म हो जाएगा, संसारिक अमृत खत्म हो जाएगी जब कृष्ण भावना का विष लगेगा तब। इसीलिए संसारिक लोग साधुओं से थोड़ा छीनते रहते हैं, क्योंकि विषधर हैं साधु लोग, विष जब प्राप्त हो जाएगी तो संसार का सुख अच्छा नहीं लगेगा। तो अजगर वृत्ति से यापन करते हैं। प्रहलाद महाराज जब राज्य कर रहे थे तो एक बार टूर पर निकले थे, जा रहे थे, तो भगवान दत्तात्रेय अजगर वृत्ति से अपना जीवन यापन करते थे, तो उनकी मुलाकात हुई भगवान दत्तात्रेय से, तो प्रहलाद महाराज उनको देख करके समझ तो गए कि ये कोई ऑर्डिनरी व्यक्ति नहीं है और बड़े हट्टे कट्टे हैं, मोटे ताजे हैं, पड़े हैं अपने जगह पर, तो जाकर के उनको प्रणाम वणाम किए प्रहलाद महाराज। सोच रहा था प्रणाम वणाम करके पूछे कि आप देखने में तो साधु सन्यासी लगते हैं, लेकिन आपके शरीर का आकार जो इतना मोटा चौड़ा है, एक भोगी के एक समान है। आपका कोई बिजनेस बिजनेस है क्या? क्या बिजनेस करते हैं खा पी करके इतने मोटे हैं? साधु और बिजनेस दोनों थोड़ा, इसलिए साधुओं को मोटा होना अच्छा नहीं है। परमहंस मोटे हो सकते हैं साधु नहीं। भक्ति सिद्धांत सस्ते गोस्वामी कहते हैं ब्रह्मचारी मतलब जो पतला रहे, जो मोटा हो गया भोगी हो गया। तो इस प्रकार से कई एक प्रश्न किए हैं और उनके प्रश्नों का उत्तर देते हुए यहां पर भगवान दत्तात्रेय कहते हैं मधुकार महासर्प लोको अस्मिन् गुरोत्तमौ वैराग्य परितोषम च प्राप्ता यदृच्छया वयम्। कहते मधुकार मधुमक्खी और महासर्प यानी अजगर, लोको अस्मिन् गुरोत्तमौ, इस संसार में हमारे दो फर्स्ट क्लास के गुरु हैं। तो न मतलब सब लोगों के लिए कह रहे हैं, अपना ही नहीं सब लोगों के लिए कह रहे हैं। लोके अस्मिन् न गुरुत्तमौ, हम लोगों के मध्य में हमारे दो उत्तम गुरु हैं, उसमें से एक हैं मधुमक्खियां और दूसरी है दूसरा है अजगर। इनसे क्या सीखना चाहिए? वैराग्यम परितोषम च, मधुमक्खियों से वैराग सीखना चाहिए। मधुमक्खियां बेचारी अपना छत लगाती है और मध लेने वाले जाकर के कंबल ओढ़ करके जाते हैं, आग लगाते हैं, सब मधुमक्खी भाग जाती है, सब मध ले लेते हैं। तो सीखना चाहिए कि संसार में कोई वस्तु ज्यादा एक्युमुलेट न करे, नहीं तो मध निकालने वाले आकर के मध ले जाएंगे, यानी काल सब कुछ हरण कर लेगा, कुछ भी साफ नहीं रहेगा। तो इसलिए वह सब नहीं करना चाहिए। और अजगर से सीखना चाहिए परितोषम, अजगर सीखना चाहिए परितोष, जो भी है उसी में संतुष्ट रहे। प्रकृष्णु पेण तो सब पूर्णतया संतुष्ट रहे, यानी हाय हाय न करें। ये नहीं कि आज मिल गया और कल क्या होगा, ऐसा नहीं। परितोष, ऐसे भी कहा जाता है संतोषातम परमम सुखम, जो व्यक्ति संतोषी है वह बहुत बड़ा सुखी व्यक्ति है, वही सुखी व्यक्ति है। तो प्राप्तम यदृक्षया वयम, ये सब भगवान की कृपा से हम लोगों को प्राप्त है, इसलिए हमें हाय हाय नहीं करनी चाहिए। विराग सर्व कामेभ्यो शिक्षितो मे मधुव्रता, मैं सीखा हूं मधुमक्खियों से वैराग्य। मधुमक्खियों से वैराग का शिक्षा प्राप्त करता हूं। कृच्छवास मधुवत वित्त हत्वान्न तो हरे पति, किस प्रकार से मधुमक्खियां छाता लगाती है और दूसरा व्यक्ति आकर के उसे मधु को ले लेता है, फिर कुछ प्राप्त नहीं होता। इसलिए मैं प्रयास ही नहीं करता हूं कुछ एक्युमुलेट करने का। और वैसे भी रूप गोस्वामी कहते हैं भक्ति तब बढ़ती है जब हम एक्युमुलेशन की भावना को त्याग देंगे। अत्याहार प्रयास प्रजल्पनियम आग्रह जनसंग से लोलोप्यम षडवीर भक्ति विनशति, भक्ति को नष्ट कर देता है अत्याहार। अनिह परितुष्टात्मा यदृक्षोपनतादहम न इच्छे बहुहानि महारिव सत्वमान। और मैं महा महासर्प यानी अजगर से यह ज्ञान प्राप्त करता हूं कि ज्यादा एंडेवर नहीं करने का खाने पीने के लिए, जो लिखा होगा वो प्राप्त हो जाएगा। हम कितना भी एंडेवर करें, हमारे एंडेवर से वस्तुएं प्राप्त नहीं होती है, जो होने को होता है वही होगा। चैतन्य भागवत में एक बड़ा सुंदर कथा है कि कैसे एक बार एक ब्राह्मण आया था महाप्रभु के घर पर। हालांकि पूर्व जन्म के वे गर्गाचार्य थे, लेकिन इस जन्म में एक ब्राह्मण के रूप में आए थे। और चैतन्य महाप्रभु के माता पिताजी उनको आग्रह किए कि आप हमारे यहां पर रहिए और खाने पीने का व्यवस्था कराए। एक बार जब भोग लगाने गए और महाप्रभु को सॉरी भगवान को बुला रहे थे, भोग लगा रहे थे, तो चैतन्य महाप्रभु आकर के और खा लिए। जब खाने लगे तो ब्राह्मण बड़ा दुखी हो गया, कह रहे हमारे गोपाल नहीं खाए और यह खा रहा है पूरा। और बड़े उच्च कोटि के ब्राह्मण थे, हालांकि महाप्रभु के पिताजी ब्राह्मण थे लेकिन उतने उच्च कोटि के ब्राह्मण नहीं थे। ब्राह्मणों में कई कैटेगरी होती है। तो उनको बड़ा दुख हुआ उनके माता पिताजी को कि हमारा बच्चा ऐसा कर दिया। तब वे पुनः प्रार्थना किए कि आप पुनः भोजन बनाएं, एक बार क्षमा करें। पुनः ब्राह्मण नहा वहा करके भोजन बनाया और फिर महाप्रभु आकर जब भोग लगाना शुरू किया तो महाप्रभु आकर के पुनः उसको छू दिए, खाने लगे। तो बहुत दुखी हो गए वे लोग, बहुत दुखी हो गए कि ये मेरा बेटा बार बार बदमाशी कर रहा है और ब्राह्मण के द्वारा बनाया गया जो भोग है उसको ये कर देता है। तो ब्राह्मण परमहंस थे, उन्होंने कहा है जगन्नाथ मिश्र, हे सची माता, आप लोग चिंता मत करें। जिस दिन जिसको जो खाने को लिखा रहता है वही मिलता है। यदि खाने को अच्छा चीज नहीं होगा और 56 भोगी बना हुआ तो कुछ इमरजेंसी आ जाएगा कि हम नहीं खा पाएंगे। तो बड़ा सुंदर वहां पर व्याख्या किया गया। तो वैसे ही यहां पर दत्तात्रेय कई एक बात वहां बताए हैं। इस जो भी बात बताए हैं इसके दो दो अर्थ हैं। एक अर्थ है इस जन्म में और दूसरा अर्थ है क्योंकि आत्मा अमर है तो विभिन्न प्रकार का जन्म लेता है और जिन जिन जन्मों में जो जैसा जैसा देह प्राप्त करता है उसके अनुसार उसे प्राप्त होता है। कभी कभी राजा का देह मिलता है तो मखमल के बिछावन पर सोता है, 56 भोग खाता है। और कभी कंगाल का देह मिल गया तो रोड पर सो जाता है, मच्छर काटे कुछ भी काटे जो मिलता है। कभी कुत्ते का देह मिल गया। तो ये सब पूरा बताए हैं कि किस प्रकार से अपना ये देह पालन करते हैं। कभी स्नान करते हैं, क्वचित स्नानो अनुलिंगात सुवास स्वंग अलंकृत। कभी कभी कितने दिन मैं बिना नहाए रहता हूं, घास पुत्ते पर पड़ा रहता हूं। कभी कभी खूब सुगंधित द्रव्यों और तेलों से मेरा श्रृंगार होता है, मैं स्नान करता हूं। कभी कभी रथ पर चढ़ करके चलता हूं, जब राजा बन जाता हूं, ये देह राजा प्राप्त कर लेता है देह का। तब इस प्रकार से अंतिम जो बात था मैं बात करना चाहता था वो बताना चाहता कि उन्होंने कहा कि कैसे मैं संतुष्ट रहता हूं। प्रहलाद जी पूछे थे एक तो उनके शरीर के विषय में कि बड़े आप शरीर आपका हट्टा कट्टा है, निरोग शरीर है और निश्चिंत पड़े रहते हैं, आप संतोषी कैसे बने रहते हैं। एक शरीर का और मन का बात, मन कैसे आपका डिस्टर्ब नहीं होता है। तो कहते हैं ना हम निंदते न च औस्तवी स्वभाव विसनम विषम जनम एते साश्रेयासासे उतय कामत्य महात्मनि। वैष्णव को ये सीखना चाहिए, सभी भक्तों को यह श्लोक याद रखना चाहिए। कहते ना अहम निंदे, मैं किसी का निंदा नहीं करता। पहला नंबर वैष्णव हुआ है जो दूसरे का निंदा नहीं करता है। न च अस्तो भी, न तो मैं किसी का प्रशंसा करता, न मैं किसी का निंदा करता हूं, न मैं किसी का प्रशंसा करता हूं। क्यों? स्वभाव विषमम जनम, सबका स्वभाव अलग अलग है। सब व्यक्ति, कोई व्यक्ति इसका हम अभी निंदा करते हैं, हो सकता है कल वह स्तुति का पात्र हो जाए, और जिस व्यक्ति का हम आज स्तुति करते हैं कल हो सकता है वह निंदा का पात्र हो जाए। क्योंकि कर्म के अनुसार सब लोग इन परिस्थितियों में जाते हैं, ये निंदा स्तुति कर्म के अनुसार प्राप्त होता है। तो मैं केवल क्या करता हूं, ये तो एसाम श्रेय, उन लोगों के कल्याण के लिए जो निंदनीय है उनका भी और जो स्तुति के योग्य हैं उनका भी। आशा से उतैकात्मा महात्मन, मैं केवल इतना ही आशा रखता हूं और भगवान से प्रार्थना करता रहता हूं कि इनका भगवान से एकात्म हो जाए, यानी ये लोग कृष्ण भावना भावित हो जाए, कृष्ण के भक्त बन जाए। यही वैष्णव का आचरण, ये परमहंस गति यही है, ये सीखनी चाहिए कि एकमात्र आशा यही रहनी चाहिए कि सब प्राणी जो इस संसार में सुख दुख के चक्कर में पड़े हुए हैं उनका भगवान से एकात्म हो जाए, यानी वे भगवान की तरफ मुड़ जाएं। अभी वो 36 हो गए हैं, वो 63 हो जाएं, सामने सामने कम से कम हो जाए। तो इस प्रकार से परमहंस गति व्यतीत करते हुए अपना जीवन यापन कर रहे थे भरत जी। एक समय की बात है, वे भाई लोग उनको भेज दिए थे खेत पर ही थे। और जो खेती किए हैं, आप में से कितने लोग खेती किए हैं, हाथ रहे तो खेती के विषय में जानते हैं थोड़ा, आजकल तो खेती का दिन है ना, और जो बिल्कुल नहीं जानते हैं वो हाथ रहिए, चलो गांव में चलो सब, अभी खेती का समय आ गया है, दिखाई पड़ेगा। तो बहुत काम होता है, जैसे रोपनी हो जाती है धान की तो खेत में पानी रहे, कोई हिंसक कोई पशु आकर के उसे चर न ले, तो किसान लोग बेचारे घूमते रहते हैं, अपना मेड़ ओड़ बांधते रहते हैं ताकि पानी निकलने न पाए, कोई दूसरा सांड भैंस इत्यादि उसमें जंगली जानवर ना जाए खाने के लिए घूमते रहते हैं। तो ये सब सौतेले भाई लोग भरत जी को यही काम दे दिए थे, वॉचमैन का काम। लेकिन भरत जी को समझ नहीं पा रहे थे, वैष्णव एर क्रिया मुद्रा विज्ञाना जानिबे, बड़े बड़े लोग ही वैष्णव का क्रिया मुद्रा नहीं समझ पाते, वो जानते नहीं थे ये लोग। और ऐसे भी संसार में लोग समझते हैं साधु का मतलब होता है क्या, साधु मतलब संसारी लोग क्या? बोलो ना कम से कम, संसारी लोग क्या समझते हैं साधु का मतलब, मूर्ख। बोलो समझते हैं साधु मतलब मूर्ख, ये नहीं है को समझते हैं कि वो मूर्ख है, दूसरे को मूर्ख पागल, दूसरे को पागल कहता है, मैं पागल नहीं तुम पागल हो। हमारे एक भक्त हड़ाई पंडित पता नहीं कहां गए, अभी कहीं दूसरी जगह है, थोड़ा एक्सेंट्रिक था उसको, कई कई मतलब मैड हैरी, आई एम नॉट मैड, यू आर मैड, ये उसका रिप्लाई था। तो संसारिक लोग जो मूर्ख हैं वो समझते हैं कि साधु लोग मूर्ख होते हैं। मुझे एक कथा याद आ रही है, एक फकीर था एक साधु और एक पीर था। उस समय मुगल राज था और एक राजा थे, उनका नाम था अशरफ दौला, अशरफ दौला राजा का नाम था। तो ये पीर जो साधु था वो बोलता था, जो देगा मौला क्या देगा अशरफ दौला। अशरफ दौला जो राजा था बहुत अच्छा राजा था, वो अपने प्रजा का अच्छी तरह से पालन करता, सब कुछ देता था, शोषण नहीं करता था प्रजा का, और सब लोग उसका गुणगान करते थे। तो गुणगान कर रहे थे भगवान को ये नाम ही नहीं ले रहा था, तो साधु से रहा नहीं गया। तो उसने कहा, जो देगा मौला क्या देगा अशरफ दौला, मौला मतलब भगवान, जो भगवान देंगे अशरफ दौला क्या देगा। तो पीर आया का नहीं, ऐसे आप कैसे कह सकते हो, आप देख नहीं रहे हो,
सब कुछ असर बदौलत दे रहे हैं। जो देगा असर बदौला क्या देगा मौला, आपका भगवान क्या दिया अब तक से, डरते रहो भगवान राम राम करते रहो क्या मिला है, लेकिन असर बदौला के पास जाओ सब कुछ मिल जाएगा। अब साधु और पीर के बीच में थोड़ा झंझट हो गया, झगड़ा हो गया। अब यह बात गया अशरफ दौला के पास। अशरफ दौला ने पूछा साधु से, क्या तूने ऐसा कहा है कि जो देगा मौला क्या देगा अशरफ दौला? कहा बिल्कुल महाराज बात सही है, आप भी पोस्टमैन हो, भगवान जो देते हैं वो देते हो, अपने घर से क्या लेकर आते हो। साधु बिल्कुल निर्भीक था ना, कोई डर नहीं था दोनों को, बोल दिया सीधे कि जो देगा मौला क्या देगा अशरफ दौला। पीर से पूछा गया, क्या तू बोला है ऐसा क्या कि जो देगा अशरफ दौला क्या देगा मौला? हां महाराज कहिए मत, पूरा प्रजा आपका गुणगान कर रही है, सबका पालन आप कर रहे हैं। कहा अच्छा, तो कहा ठीक है तुम जाओ, आज के सातवें दिन परीक्षा होगी कि किसको मौला क्या दिया है और अशरफ दौला क्या दिया है। तो साधु तो बेचारा हरे कृष्ण करते हुए बाहर चला गया। जो पीर था उसको अशरफ दौला ने एक तरबूजा दिया, गर्मी का दिन था तो बड़ा तरबूजा दिया, और तरबूजा में थोड़ा छेद करके काट करके उसमें एक सोने का गिनी डाल दिया और पैक कर दिया। तरबूजा काटकर पैक कर सकते हैं। तो पीर सोचा कि गर्मी का दिन है, हमारा इतना बड़ा परिवार है, एक तरबूजा में क्या होगा, और वही पता नहीं सड़ा है क्या है, फटा हुआ तरबूजा लगता है। वो सोचा इस तरबूजा को मैं बेच करके और जो भी पैसा मिलता है उसे चावल दाल खरीद करके परिवार का भरण पोषण करूंगा। वह एक फल वाला के पास गया और वह तरबूजा फल वाले को बेच करके और उसे चावल दाल लेकर के चला गया। ये साधु महात्मा घूमते घूमते आए, चावल दाल कुछ भिक्षा मांगे थे। साधु ने सोचा कहां चूल्हा चौकी करने जाएं, कहां चावल दाल बनाने जाएं, गर्मी का दिन है अच्छा समय है, तरबूजा भी कहीं मिल जाए तो अभी काम चलेगा। वो फल वाले के पास गया और फल वालों कहा कि देखो भाई ये चावल थोड़ा है, दाल है, तुम ले लो और मैं फल दे दो। कहां कोई बात नहीं दे दीजिए, ले लिया। वो सोचा ये साधु आदमी मूर्ख नंबर एक है, तो उसने वह तरबूजा निकाला जो कटा हुआ था, जो फटा हुआ था, कहे फटा हुआ है खराब तरबूजा को खरीदेगा नहीं, साधु को भी देते। उसने बेच दिया साधु को, साधु लेकर गया तरबूजा काटा तो उसमें सोने का गिनी निकला। यह क्रम सात दिन तक चलता रहा। अशरफ दौला ने पीर को दिया तरबूज, वो लाकर बेचा और ये साधु डेली चावल दाल जाता था उसको दे करके, पहले बटर सिस्टम था ना, बटर सिस्टम था पहले पैसा का, वो दे करके और तरबूज ले लिया तक करता था। तो सात दिन में सात सोने का गिनी उसको मिल गया साधु को। जब अशरफ दौला बुलाया, अब परीक्षा होगी, साधु से पूछा तुम्हें क्या दिया मौला ने, पॉकेट में हाथ निकाला, झोली में हाथ लगाया निकाला, कहा कि महाराज देखो ये हमारे मौला ने दिया है सात सोने का गिनी। इसको आश्चर्य हो गया। तो अशरफ दौला ने पूछा पीर से कि तुमको क्या दिया, हमारी तरफ से तुम्हें क्या मिला? कहा कि अरे महाराज मत पूछिए, सात दिन तक हमारा परिवार चैन से खा पी करके आराम किया है। कहा अच्छा क्या किया? अरे आप जो तरबूजा देते थे ना, इतना अच्छा तरबूजा था, मैं उसको बेच बेच करके डेली चावल दाल खरीदता था और परिवार का भरण पोषण किया। अशरफ दौला सिर पर हाथ रख लिया और कहा कि हे महाराज, हे महात्मा, धन्य है आप। और सबके सामने कहा कि बात सही है कि जो देगा मौला क्या देगा अशरफ दौला। और बाद में अशरफ दौला पूरा खुलासा किया कि कैसे मैं अपना नाम बढ़ाने के लिए तरबूज में सोने का गिनी डाल करके देता था, लेकिन मूर्ख का दिमाग खराब था, ये जाकर के बेच दिया करता था। और वो दुकानदार, उसका भाग फूटा हुआ था, वो समझा कि साधु मूर्ख है, उसको फटा हुआ तरबूज है उसके बेच दो। तो जो देगा मौला क्या देगा अशरफ दौला, भगवान जो देंगे, कहते हैं ना कि भगवान लेते हैं, देते हैं तो छप्पड़ फाड़ कर और लेते हैं तो गुदरी उजाड़ कर, सब ले लेंगे भगवान। इसीलिए हम लोगों को कृष्ण भावना भावित होना चाहिए। भले संसार के लोग समझें कि हम लोग मूर्ख हैं, और लोग समझते हैं, वो फल वाला भी यही समझ रहा था कि फकीर मूर्ख है, इसको मालूम नहीं है मैं फटा हुआ टूटा हुआ फल सड़ा हुआ फल दे रहा हूं इसको, लेकिन उसको सोने का कि नहीं मिल रहा था डेली। तो संसार के लोग ऐसा सोचते हैं, तो ऐसे ही भाई लोग सोचते थे। अब देखिए, अरे गोपाल भट्ट गोस्वामी का भी चलिए। अथ अब कहानी दूसरी मोड़ ले रही है, नई मोड़ ले रही है। संस्कृत में अथ और इति दो शब्द हैं, जब कोई चीज शुरू होता है उसे अथ कहते हैं, जब अंत होता है तो इति। अथ कदाचित किसी समय की बात है, वृषलपति, वृषलपति मतलब डकैतों का मालिक, एक बहुत बड़ा डकैत था, उसे कोई संतान नहीं था। तो ये तमोगुणी जो लोग होते हैं, रजोगुणी जो लोग होते हैं, या सतगुणी लोग भी जो देवताओं का पूजा करते हैं, वो अल्प ज्ञानी कहलाते हैं। भगवान गीता में कहते हैं, अंतवत्तु फलम तेषा तदहवत अल्पमेधसा देवान देवजो यान्ति मदभक्त यान्ति मामपि। कहते अंतवत्तु फलम तेषा, जो देवताओं का भजन पूजा करते हैं, शिव काली दुर्गा जो भी देवता हैं, कृष्ण के अलावा विष्णु के अलावा जो देवताओं का भजन पूजन करते हैं, अंतवत्तु फलम तेषा, देवता लोग फल दे सकते हैं, लेकिन वो फल कैसा होता है, अंतवत्तु, विनाशकारी होता है, उसका अंत होता है, अंतवत्तु फलम तेषा तद्भवत अल्पमेधसाम। और वे लोग अल्पमेधसाम, कम बुद्धि वाले, फल भी खत्म हो जाएगा और बुद्धि भी नहीं, देवान देव जो जानति। और इस प्रकार से देवताओं का पूजा करने वाले देवता देवलोक को प्राप्त करते हैं, और मद भक्त यान्ति माम भी, जो मेरे भक्त हैं वो मुझे प्राप्त करते हैं। तो इस प्रकार से प्रायः संसार में लोग तुरंत सब लोग प्रेयस में लगे हुए हैं, इमीडिएट रिजल्ट चाहिए, इसलिए देवताओं के शरण में जाते हैं। कृष्ण के शरण में नहीं जाते हैं क्योंकि वे अल्टीमेट रिजल्ट देते हैं, लोगों को आज इमीडिएट रिजल्ट चाहिए, इसलिए देवताओं के शरण में जाते हैं। तो इस व्यक्ति को भी जो चोरों का सरदार था, इसको इमीडिएट रिजल्ट, यानी भौतिक संसार की जो विषय वस्तुएं हैं वो इमीडिएट रिजल्ट। लोग जानते हैं कि शरीर के बाद पता नहीं क्या होने वाला है, दूसरा देह मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा, डाउट है, लेकिन वैष्णव है उन्हें कोई डाउट नहीं, वो जानते हैं, इसलिए इस शरीर का सदुपयोग करते हैं बेटर लाइफ के लिए, कृष्ण भावना प्राप्त कर करके। इसीलिए शास्त्र कहता है जब कोई मर जाता है तो लोग कहते हैं उनका स्वर्गवास हो गया, उनका वैकुंठवास हो गया, वैकुंठवास, वैकुंठ में चले गए। तो जो भगवान का भजन किए उनका तो वैकुंठवास हुआ, जो देवताओं का भजन किए उनका स्वर्गवास हुआ, और जो किसी का भजन नहीं उनका नरकवास हुआ। कोई नरकवास नहीं कहता है, सब पेपर में आता है इनका स्वर्गवास हो गया, इतना ही कहते हैं, पता नहीं कहां गए लेकिन दिखते हैं स्वर्गवास हुआ। तो यह संसार की विषय वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए संसारिक लोग देवी देवताओं के पास जाते हैं। अभी हम लोग गए थे गुवाहाटी, वहां पर बहुत सुंदर मंदिर है, लोग कहते हैं बहुत सुंदर मंदिर है, मैं गया बहुत गंदा मंदिर है, लेकिन कहते हैं सुंदर मंदिर है, कामाख्या है, बहुत लोग आते हैं। अब एक मेला लगा था, मैं सुना कि ऐसे ऐसे तांत्रिक आते हैं कि वो हवा में आसन लगाकर बैठ जाते हैं, और लोग देखने जाते हैं, आज भी अपना मंत्र सिद्ध करने आते हैं सब, विष्णु कहां है, इधर विष्णु, विष्णु विष्णु को शेष सैया पर आसन कर रहा है विष्णु आजकल। तो हम लोग जा रहे थे तो एक तांत्रिक बॉम्बे से जा रहा था और ऐसा तांत्रिक था मूर्ख कि अपना खाने पीने का सामान लगेज वाले में डाल दिया था। यहां से फ्लाइट थी 3-4.5 घंटे का फ्लाइट, कलकत्ता होकर के जाना था। खाने पीने के लिए कुछ था नहीं, विष्णु के बगल में था, विष्णु साधु आदमी अपना खाना उसको दे दिया खाने के लिए, तू खा लो भाई। फिर तांत्रिक बता रहा था क्या क्या वहां होता है। हमसे ही भक्त लोग कहे कि चलो देख करके आते हैं वहां पर कैसे लोग जोगी लोग ये करते रहते हैं। मैं कहा कि फ्लाइट उड़ रहा है बिना जोग का ही, पेट्रोल से हवा में उड़ रहा है, ज्यादा समय नहीं लगता है इसको, 1 घंटा में ऊपर चला जाता है उड़ने के लिए पेट्रोल से। ये लोग कई एक साल तपस्या करके तब थोड़ा हवा में उड़ लेते हैं, बड़ा बात क्या है। एनीवे, तो मैं गया था एक बार देखने के लिए और मैं कान पकड़ लिया। मैं अपराध नहीं करना चाहता हूं, लेकिन गया था देखने के लिए। वहां पर भैंसा का मुड़ी काट कर वहीं पड़ा हुआ था, बकरे का भैंसा का, गिनगिनाहट आ गया, टोकरेज निकल रहे जा, इतना गंदा, इतना गंदा। कहते सबसे सुंदर चीज है देखने का। तो ये तमोगुणी लोग ऐसा ही करते हैं विषय वस्तुओं की कामना लेकर के। तो यह भी उसी कामना से कहते हैं आपत्य काम, आपत्य मतलब पुत्र, देह अपत्य कलत्रादिशु, भागवतम वर्णन, देह अपत्य कलत्रादिशु। इसको लोग सैनिक समझते हैं अपना, देह अपत्य मतलब बाल बच्चे और कलत्रादिशु पत्नी पुत्र और अन्य लोग। तो पुत्र की कामना को लेकर के, पुत्र की इच्छा के लिए, पुत्र के लिए वह बलि देना चाहते थे एक व्यक्ति को, यही यहां पर बताया गया इस श्लोक में। वे लोग बलि का बकरा चुन लिए थे। यहां पर एक और दूसरा बात है, पुरुष पशुम, पुरुषम पशु। आजकल यदि देखा जाए तो 99% लोग पुरुष पशु के कैटेगरी में आ जाते हैं, क्योंकि पुरुष कौन है, आहार निद्रा भय मैथुनम च, ये तो पशु का परिभाषा है। धर्म ही एको अधिको विशेष और धर्म विहीन पशु भी नारायण, धर्म ही एक है जो पुरुष और पशु में भेद बतलाता है, और जिसमें धर्म नहीं है वह पशु तुल्य है। द्विपाद पशु, दो पैर के पशु, जो अधार्मिक व्यक्ति है वह पशु तुल्य है। इसका मतलब नहीं कि बलि जीने योग है, मैं नहीं कर रहा, भजन कराने योग है, उनको प्रचार करने की जरूरत है। तो इस प्रकार से भरत जी को वे लोग पकड़ करके ले गए। एक कहानी मैं यहीं बंद करता हूं। आज गोपाल भट्ट गोस्वामी का तिरुभाव तिथि है। मैं चैतन्य चरितामृत लाया था कि थोड़ा पढ़ूंगा, लेकिन घड़ी का कांटा आगे बढ़ते जा रहा है, नहीं रुक रहा है। तो हम लोग थोड़ा संक्षिप्त में गोपाल भट्ट गोस्वामी के संबंध में चर्चा करेंगे, जो मेरे हेड में है, पढ़ेंगे नहीं। गौर गणोदेश दीपिका में वर्णन किया गया है कि गोपाल भट्ट गोस्वामी कृष्ण लीला में अनंग मंजरी थे। कहीं कहीं कहा गया कि गुण मंजरी थे, जो भगवान चैतन्य महाप्रभु के लीला में गोपाल भट्ट के रूप में आए थे। गोपाल भट्ट गोस्वामी का जन्म 1503 ईस्वी सन में हुआ था श्रीरंग क्षेत्र में। वहीं रंग क्षेत्र श्रीरंगम के पास एक गांव है जिसका नाम है बेलागुंडी। बेलागुंडी गांव में उनका जन्म हुआ था, गोदावरी नदी के तट पर। और वे पिता, उनके पिताजी 3 भाई थे, वेंकट भट्ट और उसके बाद प्रबोधानंद सरस्वती और एक और थे, 3 भाई थे। और वे लोग वेंकट भट्ट उसके मुखिया थे, और वे लोग साथ में ही रहा करते थे। भक्ति रत्नाकर में गोपाल भट्ट गोस्वामी के विषय में ज्यादा व्याख्या सुनने को मिलता है, ऐसे चैतन्य चरितामृत में थोड़ा सा है, जब कृष्णनाथ कविराज गोस्वामी जब समस्त वृंदावन के गोस्वामियों से परमिशन ले रहे थे चैतन्य चरितामृत लिखने के लिए, जब गोपाल भट्ट गोस्वामी के पास गए तो गोपाल भट्ट गोस्वामी आशीर्वाद दिए कि जरूर लिखिए, मेरा पूरा आशीर्वाद है, लेकिन आपसे मेरा एक ही प्रार्थना है कि मेरा जिक्र कहीं मत कीजिएगा। इसलिए उनका जिक्र कहीं पर नहीं है, थोड़ा यदा कदा कहीं पर थोड़ा परिचय है। एनीवे, गोपाल भट्ट गोस्वामी का जन्म जैसा कि बताया कि 1503 ईस्वी सन में हुआ था। गोपाल भट्ट गोस्वामी बचपन से ही कृष्ण भावना भावित थे। एक समय उन्हें दिव्य स्वप्न हुआ और दिव्य स्वप्न में भगवान चैतन्य महाप्रभु के नवदीप लीला का वे दिग्दर्शन किए। जब वे नवदीप लीला का दर्शन कर रहे थे तो उस समय उन्होंने देखा कि चैतन्य महाप्रभु संन्यास ले रहे हैं। जब संन्यास लीला को देखे तो वे उस दिन से लगे रोने। उनको अच्छा नहीं लगा कि भगवान चैतन्य महाप्रभु संन्यास ले, तो वे रो रहे थे। एक दिन पुनः स्वप्न हुआ, भगवान चैतन्य महाप्रभु आए और गोपाल भट्ट गोस्वामी को समझाए कि किस प्रकार से प्रचार के लिए आए हैं और उनको सहायता करना है। छोटे बालक थे, 2-3 साल के। भगवान चैतन्य महाप्रभु गोपाल भट्ट को आलिंगन किए और गोपाल भट्ट अपने अश्रु से भगवान चैतन्य महाप्रभु का अभिषेक कर रहे थे और भगवान चैतन्य महाप्रभु अपने अश्रु से गोपाल भट्ट गोस्वामी का अभिषेक कर रहे थे। जब भगवान चैतन्य महाप्रभु का आलिंगन गोपाल भट्ट को प्राप्त हुआ तब उनका दुख दूर हो गया और भगवान चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि इस बात को आप किसी को मत बताना। इस प्रकार से गोपाल भट्ट अपने माता पिता के साथ वहां पर रहते थे। एक समय की बात है, 1510 ईस्वी सन में, कहीं 11 लिखा है कहीं 10 लिखा है, उस समय गोपाल भट्ट गोस्वामी 7 साल के थे, 3 भाई के बीच में एक बच्चे थे। गोपाल भट्ट के पिताजी रामानुज संप्रदाय के महान वैष्णव थे, प्रबोधानंद सरस्वती संन्यास ले लिए थे, वो सन्यासी थे, और अन्य 2 भाई गर्गृहस्थी मते थे, लेकिन सब के सब रामानुज संप्रदाय के वैष्णव थे, लक्ष्मी नारायण के पुजारी थे। जब भगवान चैतन्य महाप्रभु आए तो श्रीरंगम, जहां पर जो गोदावरी नदी के किनारे बहुत सुंदर मंदिर है, प्रभुपाद जी तात्पर्य में श्रीरंगम का वर्णन किए हैं कि श्रीरंगम कैसा है, मैं थोड़ा जस्ट इतना ही पढ़ूंगा। श्री वैकुंठ भट्ट वाज़ ए वैष्णव ब्राह्मण एंड इनिशिएटेड एंड इनहैबिटेंट्स ऑफ रंग क्षेत्र, ही बिलोंग टू ए डिसिप्लिक सक्सेशन ऑफ श्री रामानुजाचार्य। श्रीरंग इज वन ऑफ द प्लेस ऑफ पिलग्रिम इन द प्रोविंस ऑफ तमिलनाडु। इनहैबिटेंट्स ऑफ दैट प्रोविंस do not retain the name Venkat. It is therefore supposed that Venkat Bhatt did not belong to that province, although he may have been residing there for a very long time. Venkat Bhatt was in a branch of Ramanuja Sampradaya known as Badagali. He had a brother in the Ramanuja Sampradaya known as श्रीपाद प्रबोधानंद सरस्वती। द सन ऑफ वेंकट भट्ट वाज लेटर नोन इन गौड़ीय संप्रदाय एज गोपाल भट्ट गोस्वामी एंड ही एस्टेब्लिश द राधारमन टेम्पल इन वृंदावन। मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट हिम मे बी फाउंड इन ए बुक नोन एज भक्ति रत्नाकर बाय नरहरि चक्रवर्ती। प्रभुपाद इतना ही लिखे हैं। एनीवे, जब भगवान चैतन्य महाप्रभु वहां पर आए तो आज भी भगवान शिष्या पर शयन किए हैं। कहा जाता है कि जो श्रीरंगम में प्रभु हैं वे विभीषण जी के आराध्य देव हैं। भगवान श्रीराम का पूजा करने विभीषण जी आते थे और
विभीषण जी को भगवान श्री राम ने वो सिर विग्रह दिया था जो वहां पूजा करते थे गोदावरी के तट पर। तो वहां पर ये निवास करते थे और प्रत्येक दिन वहां आज भी बहुत वैदिक मंत्र बतलाओ कौन डिवोटी प्रत्येक दिन वहां पर वैदिक मंत्रों का उच्चारण होता है, पूरा मंदिर गूंजता रहता है वैदिक मंत्रों से। उस दिन जब भगवान चैतन्य महाप्रभु आए तो उससे उद्दान कीर्तन होने लगा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। सब ब्राह्मण लोग अपना वेद पुराण वैदिक मंत्र छोड़ छाड़ करके सब देखने लगे महाप्रभु की तरफ। कुछ लोग नाचने गाने लगे और उसमें से एक थे वेंकट भट्ट, ये भी नाचने गाने लगे। महाप्रभु इतने भाव विभोर हो गए कि वे तुरंत भूमि पर गिर पड़े। वेंकट भट्ट भगवान चैतन्य महाप्रभु के चरणों में जाकर के उनका पास सम्मान किए, सेवा किए। जब महाप्रभु भाववेश से बाहर आए तो वेंकट भट्ट उनसे प्रार्थना किए कि आप हमारे घर चलिए। भगवान चैतन्य महाप्रभु चातुर्मास के इन चार महीनों में, चतुर्मास शुरू हो गया है, वेंकट भट्ट के घर पर निवास किए और वहां पर जितने ब्राह्मण लोग थे वो प्रत्येक दिन महाप्रभु को आमंत्रित करते थे कि आइए खाने के लिए, और महाप्रभु प्रत्येक दिन जाकर के खाते थे। चतुर्मास का मतलब ये नहीं जैसे आजकल हम लोग कुछ नया नया चीज शुरू कर दिए हैं, महाप्रभु जाकर खाते थे डेली। मेन चीज है प्रचार करना, वो प्रचार करते थे और अपने पार्षदों को ढूंढने महाप्रभु निकले थे जहां पर गोपाल भट्ट गोस्वामी थे। चैतन्य महाप्रभु जब वेंकट भट्ट के यहां निवास करते थे तो विभिन्न प्रकार की वार्ताएं वेंकट भट्ट से होती थी। वेंकट भट्ट लक्ष्मी नारायण के भक्त थे, लक्ष्मी नारायण के भक्त थे वेंकट भट्ट। तो चैतन्य महाप्रभु उनको चाहते थे कृष्ण का भक्त बनाना, स्वाभाविक है। हम लोग जो देवी देवता का भक्त होता है उसको भी कृष्ण भक्त बनाना चाहते हैं, ये तो लक्ष्मी नारायण के भक्त थे, फिर भी महाप्रभु चाहते हैं कृष्ण का भक्त बनाना। तो सोचे कैसे बनाऊं, ये ब्राह्मण है। धीरे धीरे दोस्ती हो गई, हम लोगों को सीखना चाहिए प्रचार करना, कैसे प्रचार करना चाहिए। महाप्रभु का जो ये सेक्शन है वेंकट भट्ट के साथ में, कैसे ऐसे लोगों से प्रचार करना चाहिए। हम लोग कभी कभी देखा जाता है कि एक घर में एक भक्त बन जाता है डिवोटी, बाप माँ शिव जी का पूजा करते हैं, दुर्गा पूजा करते हैं, तो कहते हैं तुम्हारे हाथ का हम नहीं खाएंगा, नहीं खाऊंगा, तुम दुर्गा का पूजा करते हो, तुम काली का पूजा करते हो, ये देवी देवता भगाओ घर से, हैं स्ट्राइक करना शुरू कर देते हैं और कुछ, ये फेनाटिसिज्म है। चैतन्य महाप्रभु ऐसा कुछ भी नहीं किए, क्या किए, वेंकट भट्ट से दोस्ती किए और दोस्ती करके धीरे धीरे बात करने लगे। तो मजाक मजाक में कहते हैं जब बात हो रही थी ऐश्वर्य भाव का और माधुर्य भाव का, तो महाप्रभु माधुर्य भाव का खूब गुणगान किए, खूब गुणगान किए और कहे कि आप कहते हैं कि आपकी लक्ष्मी जी जो हैं वो नारायण की चिष्ट हैं, चिष्ट पत्नी हैं, सती हैं, तो सती स्त्री कृष्ण के पीछे क्यों दौड़ती हैं, वो कृष्ण को क्यों प्राप्त करना चाहती हैं। तो वेंकट भट्ट ने कहा कि नहीं, इसमें सतीत्व तो खराब नहीं होगा क्योंकि विष्णु और कृष्ण दोनों एक ही हैं, अलग अलग केवल रूप है। तो यदि लक्ष्मी जी कृष्ण को प्राप्त करना चाहती है, कृष्ण का संग करना चाहती है, तो उसमें कोई तकलीफ नहीं है, उसमें कोई तकलीफ नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है, वो कर सकती हैं और इसमें उनका चेस्टिज में खराब नहीं हो, खत्म नहीं होगा। तो इस प्रकार से वार्ता हो रही थी, वार्ता हो रही थी।
तब महाप्रभु बोले कि ठीक है, यहां तक ठीक है। तो वो चाहती हैं वृंदावन में जाना, लेकिन जितने उपनिषद हैं वो तपस्या कर करके वृंदावन में कृष्ण के रास में भाग ले चुके हैं, लेकिन लक्ष्मी जी आज तक क्यों नहीं भाग ली, आज तक तपस्या क्यों कर रही हैं, ब्रज में क्यों नहीं प्रवेश कर पाई। तो वेंकट भट्ट ने कहा कि हमको मालूम नहीं है, आप बताइए। तब भगवान चैतन्य महाप्रभु बताए वृंदावन वास का परिभाषा कि लक्ष्मी जी लक्ष्मी के भाव में ब्रज में जाए तो वहां उनका निवास नहीं होगा। विषय छाड़िया कवे शुद्ध हवे मन कवे हम रव वृंदावन। जब विषय वासना को छोड़ करके ईश्वर भाव को त्याग करके कोई जाना चाहे तब वृंदावन निवास कर सकता है। तो इस प्रकार से वेंकट भस के साथ में महाप्रभु विभिन्न प्रकार से बात करते करते उन लोगों को कृष्ण का भक्त बना दिए। एक दिन गोपाल भट्ट गोस्वामी को भगवान चैतन्य महाप्रभु स्वप्न दिए और स्वप्न में उन्होंने कहा तुम वृंदावन जाओ, और कृष्ण बन गए चैतन्य महाप्रभु। उन्होंने कृष्ण का दर्शन किया गोपाल भट्ट ने, और कहा महाप्रभु ने कहा कि तुम वृंदावन जाकर के वहां रूप सनातन का संग करना। वो स्वप्न खत्म हो गया। सुबह उठते हैं गोपाल भट्ट, चल दिए वृंदावन जाने के लिए। महाप्रभु रोके, कहे नहीं अभी मत जाओ, बाप मां का सेवा करो, बाप मां का आज्ञा लेकर के ही तुम वृंदावन जाना। इस प्रकार से ये बातें हो रही थी उन लोगों में। तब कालांतर में उनके माता पिताजी जब बहुत वृद्ध हो गए थे तो वे गोपाल भट्ट को परमिशन दिए और आदेश दिए कि तुम वृंदावन जाओ और महाप्रभु ने जैसा कहा था वैसा ही तुम करो। और कालांतर में उनका देहांत हो गया, तब वहां से गोपाल भट्ट गोस्वामी वृंदावन आए। गोपाल भट्ट गोस्वामी जब वृंदावन आए उससे पहले ही रूप सनातन को मालूम हो गया कि वे आ रहे हैं, और वे चैतन्य महाप्रभु को पत्र लिखे। चैतन्य महाप्रभु बड़े खुश थे गोपाल भट्ट गोस्वामी के आगमन पर, और उन्होंने जगन्नाथपुरी से अपने एक भक्त के साथ में अपना कौपिन और बहिर्वास बैराग का सिंबल बाबाजी वेश दिए गोपाल भट्ट गोस्वामी को। इस प्रकार से गोपाल भट्ट गोस्वामी रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी के अनुज के रूप में वहां पर निवास करते थे। गोपाल भट्ट गोस्वामी बड़े प्रचारक थे, वो प्रचार करने के यादाकदा जाया करते थे। एक समय वे नेपाल गए थे और गंडकी में स्नान कर रहे थे। स्नान करने के बाद अपने जल पात्र में कुछ जल लेना चाहते थे, तो पात्र को जो ही गंडकी नदी में डाले लेने के लिए, तो उसमें शालिग्राम के पत्थर गंडकी मिलते हैं वो भर आए। सर हमें पानी चाहिए, पत्थर आ गए। तो वे उसको उलाटे कि हमको ये पत्थर नहीं चाहिए, पानी चाहिए, तो पत्थर निकल ही नहीं रहा था। तो इस प्रकार से उनको 12 शालिग्राम शिला प्राप्त हुए थे, और उसको ला करके सनातन जी पहले तो जो बहिर्वास था उसमें बांध करके अपने गला में रखते थे, और इस प्रकार से अपना साधन भजन करते थे। कालांतर में एक सेठ जी आए सनातन गोपाल भट्ट गोस्वामी के पास, ने सत्सांग दर्द प्रणाम किए, और तदोपरांत वे देखे, वो पूछे कि ये क्या है, तो बतलाए कि शालिग्राम जी हैं। तो उनका पूजा का व्यवस्था मखमल का कुछ वस्त्र दान किए और ठाकुर जी की सेवा कुछ व्यवस्था किए। तो उस दिन से गोपाल भट्ट गोस्वामी ठाकुर जी का इस प्रकार सेवा करने लगे। श्रावण का महीना था, सभी मंदिरों में झूलन हो रहा था। अब गोपाल भट्ट गोस्वामी के पास शालिग्राम थे, झूलन कैसे हो, कैसे झूला झुलाएंगे, तो उन्हें बड़ा दुख होता था। तो एक दिन भगवान को खिला पिला करके सुला दिए गोपाल भट्ट गोस्वामी, और जब सुबह उठे स्नान इत्यादि कर करके आए और पूजा करने का समय आया तो मखमल के मंदिर बंधा हुआ था, जब खोले तो देखे जो बीच वाला शालिग्राम है वह ठाकुर जी का शिव विग्रह मैनिफेस्ट हुआ है उससे, और वे हुए राधा रमण देव। राधा रमण भगवान की जय। तब से राधा रमण का पूजा, आज भी देखेंगे राधा रमण के पीछे का जो है एकदम गोला शेप में है और बाहर से विग्रह है। तो इस प्रकार से पूजा करते थे। एक समय हरिद्वार तरफ गए थे प्रचार करने के लिए, तो एक गांव, मैं गांव का नाम भूल रहा हूं, किसी को याद है? एनीवे, गांव से गुजर रहे थे, बहुत आंधी तूफान आया और उस गांव में निवास किए उस समय एक ब्राह्मण के घर पर। उस ब्राह्मण को कोई संतान नहीं था, तो ब्राह्मण दुखी रहता था। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी ने उसे आशीर्वाद दिया कि तुम्हें कालांतर में पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। तो ब्राह्मण भी बड़ा मैग्नेनिमस था, वो अभी कहा कि यदि मुझे पुत्र होंगे तो मैं प्रथम पुत्र आपको दान दूंगा। तो प्रथम पुत्र हुए गोपीनाथ, गोपीनाथ। तो जब गोपाल भट्ट गोस्वामी वृंदावन में निवास करते थे, उन्होंने कोई ग्रंथ नहीं लिखा, केवल एक लिखा सत्क्रिया सार दीपिका, और गोपाल और सनातन गोस्वामी के द्वारा हरिभक्ति विलास का संपादन किए। हालांकि सनातन गोस्वामी ने लिखा हरिभक्ति विलास, लेकिन उसके लेखक का नाम लिखा गोपाल भट्ट गोस्वामी। और जब जीव गोस्वामी सर संदर्भों का संरचना कर रहे थे, तो उनका ऑडिटिंग का काम किए गोपाल भट्ट गोस्वामी। और इस प्रकार से राधा रमण जी का वो सेवा करते थे, पूजा करते थे। तब क्या हुआ कि एक दिन वह 7 साल का बच्चा आया। सनातन गोस्वामी को आश्चर्य हुआ कि लड़का कौन है, पूछे तो उसने पूरा परिचय बताया, कहा मेरे पिताजी भिन्न हैं, मैं यहां का हूं, कि तुम जाओ और गोपाल भट्ट का सेवा करो। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी उनको सेवा में लगा दिए। गोपाल भट्ट गोस्वामी के कई शिष्य थे, जिसमें श्रीनिवास आचार्य भी थे और अन्य लोग भी थे। गोपाल भट्ट गोस्वामी और जीव गोस्वामी, नरोत्तमदास ठाकुर, श्रीनिवास आचार्य, इन लोगों के साथ में वो ग्रंथ लेकर के बंगाल आ रहे थे। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी व्यवस्था कराए थे, और इस प्रकार से गोपाल भट्ट गोस्वामी इस धराधाम पर 75 साल तक रहे, और आज के दिन 1578 में वे इस धराधाम को छोड़कर के भगवत धाम को प्राप्त किए। श्रीपाद गोपाल भट्ट गोस्वामी की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।